याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा, नोट कीजिएगा, नबी का नाम ले रही है ये कौम, ए मूसा हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। लन नस्बिर अला तौमिन वाहिद, हमसे हर रोज़ एक खाना नहीं खाया जाता। ये जुमला हमने कभी बोला या सुना? बच्चे तो बहुत बोलते हैं, रोज़ एक ही चीज़, रोज़ एक ही सब्जी पका लेती हैं। ये भी कौम बिगड़ी हुई थी। देखिए गुलाम थे मिस्र में, लेकिन बादशाहों के गुलाम थे, और जो नवाब होते हैं ना उनके गुलाम भी बिगड़े ही होते हैं। मिस्र बहुत फर्टाइल लैंड है, मुझे खुद इत्तेफाक हुआ जाके देखने का। मैंने जितनी ताज़ा सब्जी और टेस्टी सब्जी मिस्र में खाई और पकाई, इतनी कहीं और नहीं खाई। उस वक्त मुझे इस आयत की समझ आई। वहाँ खूब चटखोरे खाने खाते थे, सहरा में गए तो वहाँ अल्लाह ने मन और सलवा दिया, आसमान से गिरता था। लेकिन कहने लगे, नहीं हमसे रोज़ एक ही चीज़ नहीं खाई जाती। फदूलना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए ज़मीन की पैदावार, साग तरकारी खीरा ककड़ी गेहूँ लहसुन प्याज और दाल वगैरह पैदा करे। तो मूसा ने कहा, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या हो गया तुमको, एक बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ें लेना चाहते हो? ये होती हैं वो कौमें कि जिनके मिजाज बिगड़ चुके होते हैं। ज़रा गौर करके देखें तो क्या आज उम्मत मुस्लिमा ही का नाम तो नहीं? आज हमारी उम्मत कहाँ खो गई, खाने पकाने में खो गई। आज ककड़ी साग और प्याज और लहसुन और चटखोरे खानों में खो गई। आज क्यों कुरान के लिए वक्त नहीं है? आज क्यों अल्लाह के दीन को माँ और बेटियों की ज़रूरत होती है तो वो कहती हैं घरों की मसरूफियात बहुत है? हमारा कोई मौका खाने के बगैर नहीं आता। याद रखिए, जब कौमें ज़ुबान के चटखारे की इतनी आदी हो जाएं कि इस जिस्म को तो खिला खिला के मोटा कर दें और रूह की खुराक से खुद को दूर रखें, तो इसकी सज़ा नस्लों को भुगतनी पड़ती है। बड़े शौर से ये जुमला बोल रही हूँ। हम जब अपनी औलादों को इतना खिलाएं कि खा खा के भी वो खाएं और फिर भी हम कहें, बेटा और क्या खाओगे, हम तो सोचते हैं कि खिलाएंगे तो खुश होंगे, रात को दबा के सोएंगे, प्यार करेंगे। ज़रा चार माँओं से पूछ के बताइए कि जितना बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं उतना बच्चों का रवैया क्या बढ़ता है? स्कूल से आए, फ्रिज खोला, नथिंग टू ईट, कुछ खाने को ही नहीं है, फ्रीज़र बंद नहीं होते, और बच्चे कहते हैं कि कुछ भी नहीं। वो ये नहीं कहते एक खाना, एक ही तरह का खाना। और जिन माँ ने कहा चलो घर में तरह तरह की चीज़ें भर देते हैं ताकि इनका टेस्ट सही रहे, तो वो बच्चे रोज़ चूके 10 किस्म के पैटीज और 10 किस्म के कबाब और 10 किस्म के हॉट डॉग देखेंगे और 12 किस्म का चीज़ देखेंगे, वो कहेंगे ये तो रोज़ देखते हैं। नतीजा क्या हुआ कि जितनी चीज़ ज़्यादा हुई उतनी बेकदरी हो गई। एक बात हम सब अपने लिए लिख लें, आने वाले वक्त को बदलना है अगर नस्लों की हिफाजत करनी है, तो इनको सहरा नवर्दी करवानी पड़ेगी। इन बच्चों को अगर सिर्फ खाने में लगा देंगे और इनकी रूह की पुकार नहीं सुनेंगे, तो याद रखिए ये हमारे भी नहीं बनेंगे। तारीख कब आए जब माएँ चटनी कूट के एक रोटी के ऊपर रख के देती थी कि खाओ, तो उसे बच्चे हो सकता है कि रात को माँ के एक पाँव दबा के सोते थे। लेकिन जब से माओ ने बच्चों के ज़्यादा ही लाड देखे, और बच्चों के क्या देखे, किस मुंह से उनको रोकें, अपना भी तो मामला यही है। शादी से लेके मंगनी से लेके आम गेट टुगेदर को ले लें, खुशी तो खुशी गम पूरे नहीं होते जब तक नहीं खाते। ये सजा आज उम्मत भुगत रही है। पिछली सदी के जो माँ बाप थे, यानी जिनको आज के दौर में आप 30s 40s में देखते हैं, उनकी गफलत की सजा आज की नस्ल भुगत रही है। ये तो माँ को किसी ने बताया ही नहीं था कि तुम्हें तो अल्लाह ने नस्लों की तामीर के लिए भेजा था, वो तो रोटी सालन भी खो गई। आज भी अगर हम अपनी आंखें खोल लेंगे, इंशाल्लाह मुस्तकबिल बहुत रोशन है। आज कोशिश करनी है, हाथ रख के खिलाना है। ये खाना सिर्फ खाना नहीं होता, ये कल्चर है, सोच डिवेलप होती है। दो चीज़ें जितनी बढ़ा लें बढ़ती जाएंगी, खाना और नींद। लोग कहते हैं आप खाते क्या हैं, इसलिए कि आपने कम पे सेट कर लिया, और एक वो है कि जिसका पेट नहीं भरता, दोनों में फ़र्क है। जिनको काम करना होगा वो तो जागेंगे और वो खाएंगे कम, क्योंकि बहुत खाने से नींद आती है। दुआ करें सोई हुई उम्मत को हम सब बेतार कर सकें। या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे। बड़ी गहरी नींद सोई हुई है, कोई झंझोड़ने वाला चाहिए। दीन के नाम पे भी मिली तो सिर्फ तसल्लियाँ और लोरियाँ ही मिली, ये कर लो तो इतना सवाब, ये पढ़ लो तो इतना सवाब। अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दें। यहाँ मुहासवे का एक नुक्ता नोट करेंगे और हाईलाइट भी करना चाहें तो 61 आयत में अतस्तब दिलू नल्लजी हुआ अतना बिल्लजी हुआ खैर को कर ले। बनी इसराइल ने मन सलवा के बदले में दाल साग मांगा, ककड़ी मांगी। आज हम कहाँ आला के बदले में कहाँ अतना को पाया हुआ है, इसकी लिस्ट बनाएंगे आप खुद ही। 24 घंटे को डिवाइड करें आधे आधे घंटे की सूरत में और फिर उसको देखें कि मैं कहाँ आला को छोड़ के अदना को लेती हूँ। मिसाल दे देती हूँ सिर्फ शऊर को बेदार करने के लिए ताकि नुक्ते आपको फिर खुद भी ढूंढने आ जाएं। यानी फजर की नमाज छोड़ दी तो नींद को अपना लिया, ये है आला को छोड़ कर अदना। हाँ, वो एक शेर भी है ना जो गलत ही पढ़ूंगी, लेकिन किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे प्यार कहाँ तुमको नींद प्यारी है। मौका मिला तो सही भी सुना दूंगी ताकि आप लोग गलती ना याद करके जाएं। फिर इसी तरह अल्लाह के कलाम को छोड़कर कुछ और फिक्शन को पकड़ लेना, हलाल को छोड़ के हराम की तरफ जाना, अल्लाह के कलाम को छोड़कर माल कमाने या उसको लुटाने की तरफ जाना, इस तरह के बहुत सारे नुक्ते हम अपनी ज़िंदगी में ढूंढ सकते हैं। कहा अच्छा चाहिए जाओ फिर इहबतु मिस्रन, उतर जाओ किसी शहर में, अच्छा किसी शहरी आबादी में जा रहो और जो कुछ तुम मांगते हो वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुँची कि जिल्लत व ख्वारी और पस्ती व बदखाली उन पर मुसल्लत हो गई और वो अल्लाह के गज़ब में गिर गए। ये नतीजा था उसका कि वो अल्लाह की आयात से कुफर करने लगे और पैगम्बरों को नाहक कत्ल करने लगे। ये नतीजा था इनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो हदूद शरा से निकल निकल जाते थे। यकीन जानो कि नबी अरबी को मानने वाले हों या यहूदी हों या नसरानी हों या फिर साबी हों, जो भी अल्लाह ताला पर और रोज़े आखरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, इसका जर उसके रब के पास है और इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। मतलब क्या है इस आयत का कि अपना नाम तुम कुछ भी रख लो, यहूदी रख लो या नसरानी रख लो, अगर तुमने अमल अच्छे ना किए तो कल के यहूदी को अगर उसका यहूदी कहलाना ना बचा सका तो आज के मुसलमान को उसका मुसलमान कहलाना ना बचा सकेगा। अफसोस की बात है कि आज हम में से बहुत सारे मुसलमान साथी इस खुशफहमी का शिकार है कि हमें किसने जो आग में भेजना है, हम नबी के उम्मती, हम सैयदों के पुश्त से हैं, हम फलां की नस्ल से हैं। अल्लाह ना हसब से डरता है ना नसब से डरता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ दिया उसका नसब उसको आगे नहीं करेगा। रातों को ठुठ के अल्लाह के नबी कहा करते थे ए मली या फातिमा तो ए मली, ए फातिमा उठो अमल कर लो, कल इस सोच के साथ ना आना कि मेरा बाप नबी था वो मुझे बचा लेगा, या फुफी सफिया उठो और अमल कर लो, कल मेरी आस पे ना आना। अपनी बीवियों की तरफ इशारा करते हुए कहते कोई है जो इन हुजरे वालियों को उठाए, उठो अमल कर लो, मेरी आस पे ना रहना। क्यों हजरत आयशा को कहते हैं कि आयशा क़यामत के दिन ऐसे मौके आएंगे कि जहाँ कोई किसी को याद नहीं रख सकेगा हत्ता कि मैं भी तुझे भूल जाऊँगा। तो नामों से कुछ नहीं होता, कोई गीदड़ को शेर की खाल पहना दे तो क्या वो शेर बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसी तरह याद रखिए हमने अगर इस्लाम की खाल पहन ली और दिल मुस्लिम नहीं बना तो फिर बचने के रास्ते मुश्किल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस्लाह कर दे। याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद लिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती से थामना और जो अहकामात और हिदायत इसमें दर्ज हैं इनको याद रखना। खुजूमा तैनाकुम बिकुवा वस्कुरूमा फीहि लअल्लकुम तत्तकून। इसी जरिए से तवक्को की जाती है कि तुम तकवा की रविश पर चल सकोगे। या फिर एक मुहासबे का नुक्ता आ गया। अल्लाह कहता है किताब हिदायत को मजबूती से पकड़ लो। क्या मतलब है, इस कुरान को जोर से पकड़ लो, गिर जाए तो इसके वजन का आटा दे दो, हाँ ये मुराद है, ये मुराद नहीं है। किताब हिदायत को मजबूती से पकड़ना क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तरक तुफी कुम अमरीन, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लन तदिल्लुमा तमस्सक तुम बिहिमा, हरगिज तुम गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से नहीं पकड़ लोगे। एक है अल्लाह की किताब اور ایک اس کے نبی کی سنت. مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اس کتاب پہ عمل کرنا ہے. جیسے عام دنوں میں اللہ کی مرضی پہ چلتے تھے, خوشیوں میں بھی اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ کتاب ہمیں مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دے. اور محاسبے کا نقطہ کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کو کتنی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. خاص طور پہ میں آپ سب ساتھیوں کو کہوں گی جو طالب علم ہیں, قرآن سے تعلق جڑ جانا بھی ایک خوش قسمتی ہے. ہر ایک کی نسبت نہیں جڑتی قرآن کے ساتھ. آپ کسی کو اپنا نام دیتے ہیں؟ کسی کو آپ کہتے ہیں یہ میرا اپنا ہے؟ ہر ایک کو اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں؟ نہیں آنے دیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تو اپنے کلام کی طرف آنے ہی نہیں دیتے, لیکن وہ لوگ بڑے خطروں میں ہوتے ہیں جو ایک دفعہ اللہ کے نام سے جڑ جاتے ہیں, کتاب والے معروف ہو جاتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو شیطان کے چنگل سے بچنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے. کبھی کلاس میں نہ آنے کو دل جائے, کبھی کورس مشکل لگے, کبھی کی ہوئی کمٹمنٹ نہ نبھائی جائے, تو فوراً سوچ لیں, خود سے پوچھیں, میں نے اس کتاب کو کتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ کیا مہمانوں کے آتے ہی یہ کتاب میرے ہاتھ سے چھٹ تو نہیں جاتی؟ کیا ذرا سی بیماری پہ یہ کتاب میرے ہاتھ سے چھٹ تو نہیں جاتی؟ اور اسی طرح کے عذر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. پھر یہاں سے کتاب کا مقصد دوبارہ پتہ چل رہا ہے, لعلکم تتقون, پرہیزکاری کی کتاب. ہم نے کتنی آیتیں پڑھی؟ 63. آپ سب سننے والوں میں سے اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ان 63 آیات میں سے کیا کوئی ایک بات بھی عمل کی ملی, الحمدللہ. ایک بات اگر ہم اپنی زندگی میں وہ لے جائیں جو ہم جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں, تو فائدے کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ لیکن شیطان اس عمل کو بڑا مشکل بنا دیتا ہے. ایسا ہی ہوا کہ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین, مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے, اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھا سکے, تم نے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے, اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا, کیونکہ وہ تم سے محبت جو کرتا ہے, ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا, ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یہاں واقعہ ہے ہفتے والوں کا. بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے کے دن کوئی کام کرنا منع تھا. انہوں نے خود ہی یہ پابندی لی لیکن نبھا نہ سکے. دریا کے کنارے ایک بستی رہتی تھی, بستی والے تھے, مچھلیوں کو پکڑ کے گزر گزار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کہ ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی کہ وہ سر اٹھا اٹھا کے ان کو دیکھتی تھی. بس آزمائش آ گئی. کچھ لوگ وعدے پہ قائم نہ رہ سکے, سر عام جب وعدہ نہ پورا کر سکے تو ڈھکے چھپے, جمعے کی رات کو جال لگا دیتے, ہفتے کے دن کچھ نہ کرتے, جو ہی اتوار کی صبح ہوتی جا کے جال نکالتے اور اس میں مچھلیاں ہوتی. لوگ کہتے کہ یہ کیوں آئی, کہتے ہم نے کچھ نہیں کیا, جمعے کے دن ہم نے جال لگایا, اتوار کو پکڑی, ہفتے کو کچھ نہیں پکڑا. یہ ان کا ہیلا تھا, جال سازی تھی. چور دروازوں سے حرام کو حلال کرتے تھے, ناجائز کو جائز کہتے تھے. اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ کہا تم بندر بن جاؤ, کیونکہ بندر بڑا ہیلا باز ہوتا ہے, بہت شرارتی قوم ہے بندروں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کیا کی کہ ان کو بندر بنایا. انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹوسٹ کیا, ٹوسٹر تھے یہ لوگ. اللہ نے ان کی شکلوں کو ٹویسٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہیلوں سے. یہاں اپنا جائزہ لیں گے, کیا میں ہیلے بہانے تو نہیں کرتی؟ کیا میں اللہ کے حکموں کو ایسے توڑ موڑ کے تو نہیں پیش کرتی کہ نہیں سب ٹھیک ہے, آج کے دور میں تو یہ جائز ہے, اور پھر آج کے دور میں کہاں بھلا نیکی کا دور ہے؟ کیا آج بھلا کوئی امانت سے رہ سکتا ہے؟ آج سچ کا کہاں دور ہے؟ کیا میرے یہ سارے جملے تو نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے.